हम लोग जादो हने व हनने मथन लो पले पर इस श्लोक की हम लोग व्याख्या कर रहे थे। श्री सनातन गोस्वामी ने इसमें जो व्याख्या दी है कल थोड़ा सा हमने बतलाया था कि मथुरा की जादो पत्नियां कृष्ण को देख करके मन में सोच रही हैं, धन्या ब्रज स्त्रिय पुरुक्रम चित्त जाना, गोपियों का ही चित्त, गोपियां ही धन्य है ब्रज में, जो कि मिलन के समय में कैसा उनको आनंद होता है, अब विरह में भी उनकी कैसी स्थिति रहती है। विरह के समय में वो कृष्ण का गुणगान करती हैं और गुणगान करने से कृष्ण मानो साक्षात ही उनके सामने स्फूर्ति में प्राप्त हो जाते हैं, उस समय उनको मिलन से भी अधिक सुख होता है। तो इसी श्लोक में वो इसका वर्णन कर रही हैं। मिलन ने बतलाया, अभी आगे भी बतलाएंगे, रासलीला के समय में कृष्ण गान करते हैं और गोपियां उसे सप्तम सुर में और भी बड़े प्रेम से और मीठे स्वर से गायन करती हैं और कृष्ण साधु साधु कहते हैं और भी उनके साथ में कैसे कृष्ण उनके अंगों की धूल को झाड़ते हैं, कैसे उनके पद संवाहन के लिए तैयार होते हैं, ये सब का गोस्वामियों ने वर्णन किया है। विशेष करके उन्होंने ब्रज स्त्रियों का जो उल्लेख किया, ब्रज स्त्रिय, इसमें ब्रज की तो स्त्रियां हैं ही हैं, यहां तक कि गोवर्धन इत्यादि वन प्रदेश के जंगल प्रदेशों की वो भिल्ली की कन्याएं, पुलिंदी कन्याएं, भिल्लियों की कब, उनका भी इसमें वर्णन है। इसलिए वहां के सभी बालक बालिका, तरुणी वयोवृद्धा सभी गोपियां ही धन्य है, छोटी से लेकर के बड़ी तक। किंतु ब्रज के, ब्रज स्त्रिय, ब्रज की, दूसरे जगह की नहीं, हम लोग भी उनका दर्शन कर रही हैं किंतु हम लोग धन्य नहीं हैं। इसका कारण क्या है? जो लोग इनके प्रति अनुरक्त हो, अनुरक्त धियो, धी मने हृदय, मन, कृष्ण में संपूर्ण रूप से अनुरक्त है, अश्रुकंठ, अश्रुकंठा, अश्रुकंठा मैंने क्या है, अश्रुकंठ में कैसे जाएगा, आंख से भीतर से भीतर, गदगद बाघ युद्ध नहीं, हम भी पहले ऐसे, ऐसा नहीं, इतना रोती हैं, इतना रोती हैं कि उनके अश्रु यहां से होकर के गालों से बहते हुए एकदम भर जाता है एकदम आंसू से, इसलिए ये अश्रुकंठ, आंसू से आंसू चलते हैं और ये एकदम गला एकदम भर जाता है, जरा रो करके देखना जया होता है कि नहीं, एकदम सब गला भीज जाता था, फिर गला भीज करके तो फिर क्या होगा, बस तख्तल से बहने लग जाएगा, अश्रुकंठ है। उस समय में दोहन करने के समय में भी, गो दोहन के समय में भी, यदि हरिनाम करते समय में आंखों में आंसू न छल छला आए, यदि यहां से धारा प्रवाह आए कि नहीं आई, ये तो बहुत दूर की बात है, अंततः आंखों में आंसू भरे आए, छल छल आए, तभी सोचना चाहिए कि हमारा नाम शुद्ध हो रहा है। जब तक कि नैनंग गलत आंसू धारया गदगद रुद्धया गिरा कुलकर निचितं बपुह कदा तो नाम ग्रहणे भविष्यति। जब तक कि चित्त द्रवित न हो जाए हरिनाम से और आंखों में आंसू न आ जाए, पुलक रोमांच न थोड़ा थोड़ा हो, समझना चाहिए कि हमारा भी नाम अपराध हो रहा है। कभी कभी नामाभास हो सकता है, नहीं तो नाम अपराध हो रहा है। जहां शुद्ध नाम होगा वो अश्रु जरूर लाएगा, आभास में भी ला देगा कुछ कुछ, आभास में आंखें छल छलाएंगी। तो यदि हमारा चित्त द्रवित नहीं होता, आंखों में आंसू नहीं आते हैं और कृष्ण नाम हम करते हैं, इफ यू आर चैंटिंग हरिनाम, इफ यू आर सिंगिंग हरिनाम एंड टीयर्स आर नॉट कमिंग इन आईज, आवर हार्ट इज नॉट मेल्टिंग, देन वी शुड थिंक दैट वी आर नॉट डूइंग प्योर नेम। आवर नेम इज sometimes it be abhas, always namaparad, that is why. And this namaparad also may be of past births, it may be. Isme janme humne nahi kiya aparad, to pichle janmon ke bhi aparad hain, jarur hain, isko samajh lo. Jadi matches ऐसे करने पर भी नहीं जलती है तो क्या समझो है? किंतु पानी तो दिखाई नहीं पड़ता है। इफ यू आर ट्राइंग टू बर्न मैचेस बट इट इज नॉट फ्लेमिंग, देन व्हाट यू शुड थिंक समथिंग वेट इन देयर, बट वी डोंट सी इट फ्रॉम आउटसाइड, सो वी मस्ट देन यू शुड गिव इट टू फायर and warm it, and then you should do, oh, at once it will flame. तो जैसे जसलाई में पानी नहीं दिखाई देता, किंतु ऐसा करने पर जलता नहीं है तो समझो जरूर ये भीजा है। ऐसे हम, हमारा हृदय द्रवित नहीं होता है, पुलकित नहीं होता है, रोमांचित नहीं होता है, और हरिनाम करने पर भी संसार की वासनाएं आती हैं, रुचि नहीं इसमें हो रही है, और हरिनाम करने के समय सारे विश्व की चिंताएं और प्रॉब्लम यदि आ जाती है, इफ यू आर चैंटिंग एंड होल वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स कमिंग, ऑलवेज कमिंग प्रॉब्लम्स एंड प्रॉब्लम, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑफेंसिव, वी हैव डन एंड स्टिल वी आर डूइंग, हम लोग नम अपराध कर रहे हैं। कैसे इस नाम अपराध से हम लोग शुद्ध चित्त को कर सकें, इसके लिए चिंता करनी चाहिए। एक म्यान में दो तलवार नहीं रहेगी, भजन करने के लिए ऐसा करना पड़ेगा जैसे गोपियों का चित्त हो रहा है, एकांतिक चित्त से, तब तो वो अंततः मध्यम अधिकार में अब प्रवेश कर रहा है, नहीं तो कनिष्ठ अधिकारी में अपराध अधिक होंगे और ऐसे ही चित्त चंचल रहेगा, इसलिए उससे में निकलने की चेष्टा करना। ये सुनने से, सुनकर के चित्त वैसा बनाए तब तो सुनने का, आने तो सुनेंगे लड़ेंगे झगड़ेंगे, संसारिक विषय वासना गजगज इसमें कर रही है, फिर क्या होगा। इसलिए इन सबको हटा करके शुद्ध चित्त को करो और तब फिर देखो इनको पढ़ो, जो चित्त गदगद हो जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे। इसलिए ये गोपियां धन्य हैं, अश्रुकंठ है, कभी कभी वे उनके प्रति अनुरक्त होकर के, अनुरक्त होकर के मैंने इन गोपियों के लिए कहा जाए, अनुराग से पूर्ण होने पर अनुरक्त होता है, राग से अनुराग फिर अनुरक्त, तो ये तो गोपियों का रागात्मिक भाव है। रागानुगा जो अभी साधन कर रहे हैं उनके लिए वो साधन में आएगा, रागानुगा उस समय होगा, इसके पहले जब तक कि हम लोगों में अपराध है संसार की कोई दूसरी कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त और कोई चीज की लालसा है, कोई भी चीज की, नहीं होगा। संसार में रहते हुए भी, वैवाहिक जीवन में भी, पांडव लोग थे या और भक्तों को देखा जाता है महाप्रभु के भक्त थे, गृहस्थ जीवन में भी हमारे पुंडरीक विद्यानिधि थे, उनको देखा जाता है कैसे थे। संसार में रहते हुए भी ऊपर से संसार का कार्य निर्वाह मात्र कर रहे हैं, किंतु आसक्ति उनकी कृष्ण में है, अनुरक्ति। वो बच्चों को इसलिए कुछ स्नेह करते हैं कि वो कृष्ण में उनकी प्रीति है। स्त्री उनको इसलिए प्यारी है कि ये कृष्ण की प्यारी है। पांडवों का भी ऐसा ही, पति हमारे कृष्ण के प्रति अनुरक्त हैं इसलिए हमारे प्यारे हैं। उसी प्रकार से हम अपना देखेंगे, हमको कोई व्यक्ति प्यारा है तो कृष्ण के लिए होना चाहिए। अपने भाइयों से भी अधिक हमारा गुरु भाई प्रिय है, किस लिए? गुरु का प्रिय। किंतु गुरु भाई होते हुए यदि कृष्ण का प्यारा नहीं है और उसका भगवान में रुचि और इस तरह की आसक्ति नहीं है तो गुरु भाई क्या हुआ? उसे भी प्रीति करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनके प्रिय न राम वैदेही, इसलिए जो हमारे कृष्ण के अत्यंत प्रिय है कृष्ण भजन में, ऐसा बात करो हमारे कान में गड़बड़ होता है। तो साधन भजन इस प्रकार से करो, जे क्रमशः संसार निर्वाह के लिए, हमको जैसे गोपियां संसार निर्वाह के लिए जव कूट रही हैं, गेहूं पीस रही हैं, बच्चे को भी निर्वाह कर रही हैं, ये सब कुछ कर रही हैं, किंतु चित्त कहाँ है? उनका चित्त उस कूटने में नहीं है, उस लिपने पोतने में नहीं है, बच्चे को थपथपी देने में नहीं है, किंतु दे रही हैं। यह है निर्वाह संसार का। और चित्त कहाँ गया है? अनुरक्त धी कृष्ण में चित्त, उरुक्रम चित्त जाना, उरुक्रम कृष्ण में, उरुक्रम दे कृष्ण के चरणों में, उनकी लीलाओं में, उनके रूप गायन में, उनके चिंतन में एकदम निविष्ट हैं, आसक्त हैं, अनुरक्त हो गई हैं। ऐसा ही हमको करना चाहिए। यदि भजन करना है तो ऐसा करो, गृहस्थ लोग गृहस्थ में रहते हुए भी इस प्रकार से। और त्यागी की तो बात ही क्या, महाप्रभु जी का आदर्श, रघुनाथ दास गोस्वामी का आदर्श लेकर के भजन करो, तब फिर कोई प्रॉब्लम या समस्या नहीं रह जाएगी। इफ यू आर डूइंग भजन फॉलोइंग द फुटप्रिंट्स ऑफ रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, देयर विल बी नो प्रॉब्लम एट ऑल फॉर एनीथिंग, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओनली वन प्रॉब्लम विल बी, व्हाट दैट प्रॉब्लम? वेयर कृष्ण, हाउ टू सर्व कृष्ण, ओनली दिस प्रॉब्लम, बस एक ही प्रॉब्लम हो। अभी हमारे पास में लाखों प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए इनको हटा करके गोपियों जैसा अनुरक्त धी हो करके और अपना संसार करो, या मठ में जो सेवा कार्य है उनको करो। वे कुमकुम चंदन आदि उपलेपन, उपलेपने है ना, प्रेम, मथनों पले, मथन मथन माने दधि मंथन, उपलेपन, उपलेपन माने घर को लिपना और अपने अंगों का भी उपलेपन, कैसे? चंदन इत्यादि से, कुमकुम से, केसर से अपने अंगों का लेपन करना। किस लिए करती हैं? किस लिए? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। दधि मंथन किस लिए करते हैं? उनका दधि मंथन किस लिए है? उसके मक्खन, उसके दूध, उसके दधि, ये सब कौन खाएंगे? किंतु उतना उसमें आसक्ति नहीं है उतनी, जितनी आसक्ति है किस में? कृष्ण के लीला इत्यादि के गायन में अनुरक्त होकर के। अभ्यास बस तो उनके हाथ चल रहे हैं, अभ्यास बस, चित्त वहां, मानो आंखें बंद हैं, आंखें खुली रहने पर भी वो समाधिस्थ हैं सर्व सहज रूप में। उसी तरह से हम लोगों को भी अपने घर के कामों में यदि ऐसा कर सकेंगे तो ये सब सुन करके वैसे साधन की रुचि होगी, अन्यथा नहीं होगी। शिशुओं को हिंदोल पलने पर झूला करके उसको थपथपी दे रही है, सुला रही है, उसे खींच रही है और गाना भी गा रही है, गोविंद दामो धर्मा दवेती, गोविंद दामो। इसके बाद में संचालने दोला संचाल में शिशु को थपथपी देते हुए कृष्ण का गायन कर रही हैं, या और दूसरे लीलाओं के कृष्ण का नाम का गायन कर रही हैं और चिंतन कर रही हैं लीला का वहां। सेचने, सेचन मैंने गोमय और पानी को मिलाकर गृह सम्मार्जन, गृह का सम्मार्जन करती हैं। कभी कभी गर्मी के दिनों में चारों तरफ में खूब गर्मी पड़ती है तो हाथों में पानी लेकर के किसी बर्तन में और जमीन को सींचती हैं और झाड़ू लगा दे, झाड़ू लगा करके या पहले ही वो छिटक करके ग्राम अंचलों में और फिर उसे झाड़ू दे देते हैं, एकदम सुशीतल हो जाता है वहां पर स्थान। इन समय में भी कृष्ण का कीर्तन करती हैं। यहां पर आदि शब्द से मार्जन आदो, आदि शब्द से क्या गृहांगन लेपन, गृह भित्ति ते चित्रांकन, घरों में ब्रजवासी चित्र आलेपन करते हैं। अल्पना दरवाजे के पास में, आंगन के पास में अल्पना इधर करते हैं कि नहीं, किंतु बंगाल में और मद्रास इत्यादि साइड में पुणे इत्यादि में बहुत सुंदर होता है। और दीवालों पर चित्र अंकन करती हैं कृष्ण संबंधी है केवल, जौ और गोधूम इत्यादि रंधन करती हैं। इस प्रकार जितने भी देह और दैहिक संबंधी क्रियाएं हैं सब कृष्ण के संबंध से करती हैं। इनका कोई भी काम कृष्ण से अतिरिक्त नहीं है, कृष्ण से संबंधित इनका सारा काम है। इसलिए जीविका का निर्वाह भी, देह का रक्षण भी, ये सब कुछ कृष्ण के लिए उनके हैं। उनके भगवत भजन के अंग में ये सब कुछ भी बाधा नहीं करते, जितना भी ये जो कुछ कर रहे हमारी बाधा देते हैं। हम लोग आंगन को लीपने में ऐसे तन्मय हो जाएंगे कि कृष्ण को भूल जाएंगे, बच्चे को दुलार प्यार करेंगे तो कृष्ण को भूल जाएंगे, रसोई करेंगे तो कृष्ण को भूल जाएंगे, और इनका सब कुछ भूल करके कृष्ण में अपने चित्त को रमा देती हैं और कृष्ण को खुश करने के लिए ही वैसा करती हैं। कोई भी बाधा नहीं होती, हम कहेंगे बैठे संसार का सारा काम हमें बाधा दे रहा, हम भगवान का भजन का समय नहीं मिलता, इसलिए हमारे सारे काम जो होते हैं भगवत भजन में बाधा उत्पन्न करते हैं, और उनका कोई भी काम उनकी कृष्ण सेवा में बाधक नहीं होते। अथवा इसमें च दिया हुआ है, च एनम है ना, चैनम, चैनम अश्रुदियो च, इसका तात्पर्य क्या है, दोहन इत्यादि से लेकर के घर के समस्त कामों को, जितने भी कामों को हैं सभी में कृष्ण का गुणगान, रूपगान, उनके भावों का गान और उनकी लीलाओं का चिंतन सब में है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं, स्वतंत्र रूप में नहीं है। हम लोग कोई चीज पढ़ते हैं तो कृष्ण को भूल जाते हैं, कोई दार्शनिक ग्रंथ पढ़ेंगे तो क्या होगा, कृष्ण को भूल जाएंगे। हम कोई भी घर का काम करते हैं तो उस समय भूल जाएंगे, कोई व्यापार कर रहे हैं ना, दुकान पर बैठ गए ऑफिस में तो कृष्ण को भूल जाएंगे, लोगों से बातचीत करने में भूल, उनका कोई काम ऐसा नहीं है। सभी कृष्ण के लिए हैं और अनुरक्त होकर के कृष्ण में कर रही हैं। यहां तक कि हम रिटायर्ड हो जाने पर भी कामों से क्या करते हैं, बेकार के फालतू आलतू कामों में लग जाते हैं, अनुरक्त नहीं होते कृष्ण में। यहां तक कि मठ आश्रम में आकर के भी तरह तरह की समस्याएं बनी रहती हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा भजन नहीं करते, इसलिए तो घर छोड़ा ना भाई। इसीलिए हम यहाँ पर मंत्र दीक्षित हो रहे हैं। कोई कोई मंत्र दीक्षित होकर होने के बाद में आकर के कहता, महाराज जी हमारी बड़ी समस्या है, क्या हमने जिस उद्देश्य से हरि नाम लिया वो पूरा नहीं है। मैंने पूछा जी क्या, तो पहले कुछ रुपए पैसे आ जाते थे, अब आते नहीं है, आते ही नहीं है पैसा, और हमारा सब गड़बड़ हो रहा है। ऐसा आप कीजिए, कुछ और दूसरा मंत्र दे दीजिए, इस मंत्र से तो हुआ नहीं, दूसरा मंत्र जैसे कि रुपया पैसा आए और हमारे घर की समस्याएं समझ। हमने कहा था पहले ही ये तो विचार करने, हम जिसको मंत्र देते हैं इसलिए नहीं कि उस संसारिक वस्तुओं के लिए, वो तो अपने आप हो जाएगा। पहले जिसके लिए है भगवान की भक्ति के लिए हमारे पास में कोई आए, नहीं तो दूसरी जगह जाए। अर्थात आवश्यकता रूपे अभ्यास, ये जो कर्म है कभी कभी अभ्यास से होते हैं, क्या रसोई बनाना और जितने भी कामों को कहा, ये सब ऐसा अभ्यास है जैसे कर, जैसे चैतन्य महाप्रभु जी झारखंड में पथ में चल रहे हैं, जब भूख तो लगती नहीं किंतु जब खाने बैठते हैं उस समय जो पहले जो हा कृष्ण और कृष्ण 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 हे राम राघव राम राघव राम राघव राम हे इत्यादि जो कहते हैं, साथ ही साथ में उनके लिए प्रसाद आया चलते, तो वो क्या करेंगे, वो सब भूल जाएगा, भावावेश दूर हो जाएगा। नहीं, उस समय में भी रो रहे हैं, सब कुछ है, थाल दे दिया तो अभ्यास बस दो एक ग्रास खा लिया, नहीं तो नहीं खाया। इस तरह से उनके काम अभ्यास से होते हैं। उसी तरह से गोपियों के सारे काम अभ्यास के वस्त हो रहे हैं और कृष्ण के लिए भी हो रहे हैं, दोनों चीजें। कभी कभी सब समय ऐसा नहीं समझना चाहिए। यदि श्रीमती राधिका जी या गोपियां कृष्ण के लिए मनोहर लड्डू खीर और शक्सुली इत्यादि बना रही हैं, अमृत के लिए और कौन के लिए, ये सब जब बना रही हैं तो वो मन से बनाती हैं ना, कैसे बनाती हैं, आखिर इसको अभ्यास से कर रही हैं, अनुरक्त हैं और साथ साथ में कृष्ण के लिए अत्यंत प्रिय हो ऐसे बनाती हैं। इसलिए कृष्ण सेवा की चीजें भी ऐसी होनी चाहिए। भले ही हम साधन अवस्था में ऐसा कर सकते हैं कुछ कुछ बिना अनुरक्त हुए उन विषयों में, किंतु कृष्ण के लिए जो सेवा करेंगे उसमें अनुरक्ति भी होनी चाहिए, केवल अभ्यास नहीं, दोनों चीजें होनी चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं जो अर्चन कर रहे हैं तो अभ्यास बस्ता कर रहे हैं उसमें मन नहीं दिया, या रसोई बना रहे हैं तो ऐसे नहीं, बृहस्पति के साथ में कृष्ण को प्रिय लगने के लिए ये सब चीजों को करना चाहिए। उस समय में जो करती हैं कृष्ण का नाम गुणगान, उस समय मालूम होता है उनको जो कृष्ण का मैं कृष्ण का दर्शन कर रही हूं। हम हरि नाम करते हैं तो हमें जम्हाई क्यों आती है, हम जब प्रवचन सुनते हैं कृष्ण की ऐसी सुंदर सुंदर मनोहारी लीलाएं तो हमें जम्हाई क्यों आता है, आलस्य क्यों आता है, आंखें क्यों बंद होती है, कारण क्या, कारण क्या इसका है, ये श्रद्धा पूर्वक हम सुन नहीं गए इसलिए ये सब आलस्य आएंगे। संसारी कामों में आसक्ति आलस्य प्रमाद तो नहीं आता किंतु यहां पर आ जाता है, इसलिए रुचि को बढ़ाने की भी चेष्टा करनी चाहिए। तो कैसा दर्शन होता है जबकि इस समय गान करती हैं कृष्ण वहां नहीं है, तो कैसे, प्रातः ब्रजात ब्रजत अभिशतश्च सायं, क्या गोभीषमं कणेतो अश्य निशम्म वेनु निर्गण्य निर्गत्य तूर्णम अबलापति भूरुपुण्य पश्यन्ति शश्वत मुखो मुखम सदयावलोक। कृष्ण जब गोचारण करने के लिए जाते हैं प्रातः काल में और शाम को जब लौटते हैं तो उस समय अपने मधुर वेणु से ध्वनि करते हैं, उस समय में अबला गोपियां सस्मित मुखम कृष्ण कुछ ऐसे देख रहे हैं जो कि कुछ मुस्कुराते हुए और कुछ सदय नैनों से देखते हुए बंकिम दृष्टि से देखते हुए और मुरली बजा रहे हैं, उसको सुन करके अपने आप आकर्षित होकर के चली आ रही हैं गोपियां। यदि वन में हैं तो वेणु गीत घर में बैठी बैठी सुन करके कृष्ण का साक्षात दर्शन करते हुए देख रही हैं, देखो तो ये हिरणिया धन्य है जो कृष्ण के समीप आकर के प्रणय की भीख मांग रही हैं। घर में बैठी हुई दिखती है वो समय हरिण है न कृष्ण है, कृष्ण को ऐसा इस तरह से साक्षात दर्शन करती हैं। हम साधन भजन में भी इसी प्रकार से भजन करते हुए चिंतन करें इन लीलाओं का, नहीं होता है तो उसके लिए प्रार्थना करें, उसके लिए रोएं। कैसा दर्शन, क्रीड़ा करते करते ब्रज मध्यवर्ती श्री कृष्ण साक्षात उपस्थित होने पर साक्षात दर्शन संपन्न हो। जब सवेरे चलते हैं तो गोपियां उसे आकर्षित होकर के वेणु ध्वनि से गो गायों के हंबारों से अपने अपने घर से निकल करके एकदम पथ में खड़ी हो जाती हैं, उसमें साक्षात दर्शन हो जाता है। और जब वहां से कृष्ण निकल करके अपने मैया के घर में पहुंच जाते हैं, गैया अपने अपने स्थानों में पहुंच जाती है और यशोदा मैया के घर में जब चले जाते हैं तब एकदम वैसे ही चिंतन करते उन लीलाओं का गायन करते हुए और एकदम तन्मय हो जाती है और कृष्ण को साक्षात अनुभव करते हैं। हम लोग भी साधन के समय में ऐसा कर सकते हैं, किंतु चित्त ऐसा रहे तो अनुरक्त यदि रहे ये अपराध होने पर नहीं, 10 प्रकार के नमापराध विशेष करके वैष्णव अपराध सेवा 32 प्रकार के या 64 प्रकार के सेवा अपराध, इससे चित्त और कठोर होता जाएगा। इसलिए इन सबको दूर करके किसी प्रकार से न हो ये सब चीज, स्वप्न में भी न हो वैष्णव अपराध, हंसी में बहुत से हम लोग हंसी में दिलगी में परफेक्ट ऐसा करते हैं, इन जोकिंग समटाइम्स वी क्या क्रिटिसाइज वैष्णव, नेवर वी शुड नॉट डू एनीथिंग। वैष्णव का गुण देखो, दोष की तरफ में मत जाओ, दोष खोजने जाओगे तो अपने हृदय का सारा दोष उसमें आ जाएगा और दोष के अनुसार उनके दोष आएंगे, इसलिए उनका दोष ना देखो। जब दोष ढूंढोगे तो हरिदास ठाकुर में भी दोष आ जाएंगे, उस बेस्या को 3 दिन क्यों रखा, उससे झूठ क्यों बोला, ये तुम्हारे सब इच्छाओं को मैं पूर्ण कर, ये झूठ बोला कि नहीं, उनसे ये दोष आएगा कि नहीं। इसलिए हरिदास ठाकुर में महाप्रभु में भी दोष आ जाएंगे, इसलिए दोष दृष्टि मत देखो, उनके गुणों को देखो। यदि दोष अधिक दिखता है तो उनका संग न करो, ऐसे वैष्णवों का संग करो जिनका चरित्र भी निर्मल है और भगवान के भक्ति में बहुत अग्रसर है। ऐसे इस प्रकार से साक्षात दर्शन करती हैं, कब, जब कृष्ण ब्रज में आ रहे हैं जा रहे हैं, जब कृष्ण प्रातः काल में प्रातः ब्रजात ब्रजतः ब्रजता मैंने जब कृष्ण ब्रज से निकल करके वन में एक वन से दूसरी वन में इस तरह से बहुत दूर जब चले जाते हैं तो गोपियां क्या करती हैं, बहुत देर तक वहीं पर खड़ी रह जाती हैं पत्थर की मूर्ति के समान। ये भी दूर हो जाता, आकाश में धूल तक देखती हैं और कृष्ण का स्मरण जब वो चले जाते हैं तो बहुत देर तक खड़ी रहती, तो उनकी सास अथवा उनके घर वाले उनको कैसे तैसे लाते हैं। और घर आकर के क्या करती हैं? बस उन्हीं का लीला का चिंतन, उनका गान। दूसरे समय में, वीर के समय में ये दोहन इत्यादि का जो बतलाया, रसोई बनाना, माला ग्रंथन इत्यादि, उनका नाम गुणगान करने से ही स्फूर्ति में साक्षात की भांति कृष्ण का दर्शन करती हैं। हम लोग हरि नाम करते समय साक्षात कृष्ण को देखो तो ऐसे नहीं आते, तो गोवर्धन परिक्रमा किया है, वृंदावन की परिक्रमा किया है, भांडीर वन की किया है, उस समय का चिंतन करो लीलाओं का, जो वहां पर कौन कौन सी लीलाएं हुई, यहीं से बैठे हैं भांडीर वन की लीला, नंद बाबा कृष्ण को लेकर के चल रहे हैं, घना घोर आकाश में बादल छाए हैं, बीच बीच में बूंदे पड़ रही हैं, एक तो घना घोर आकाश घने बादलों से ढका, और दूसरा उस जंगल में जो पेड़ हैं तमाल इत्यादि के अत्यंत हरे भरे होने से और अंधकार, और कृष्ण नंद बाबा के हाथों से निकल करके श्रीमती जी के हाथों में जाते हैं, और वो लेकर के भांडीर बट के नीचे आती है, साथ साथ में ललिता विशाखा इत्यादि सखियां वहां पर परम किशोर अवस्था में, और कृष्ण भी किशोर हो जाते हैं, और उधर से ब्रह्मा जी निकलते हैं, गांधर्व वहां पर विवाह होता है, तरह तरह की लीलाएं होती हैं, सखाओं के साथ में गोचारण करते हैं, बंसी बट में रास भी करते हैं, वेणु कुप के यहाँ रास पर गोपियां थक जाने के बाद में वेणु से कुप खोद कर उसमें सुंदर पानी निर्मल निकलता है, गोपियों को संतुष्ट करते हैं, पिलाते हैं, हरि नाम करो हरे कृष्ण और चिंतन करो, तो ये सब तरीके हैं। किंतु संसार की रिक्वायरमेंट, इफ यू रिक्वायर सो मेनी थिंग्स ऑफ वर्ल्डली थिंग्स देन हाउ यू कैन डू, यदि संसारिक वासनाएं हैं और पॉकेट यदि गर्म है, इफ योर पॉकेट्स आर सो वार्म देन इट कैन नॉट बी, वी विल हैव टू बी लाइक अकिंचन निष्किंचन, जब तक अकिंचन नहीं अकिंचन होगा तब तक गड़बड़ी है भाई, तुम्हारी आसक्ति कहीं और है, इसलिए धीरे धीरे इन सबको दूर करो, अन्यथा कृष्ण में बनाओ। ये एक एक पैसा किसके लिए है? कृष्ण के लिए है, तो फिर अपना उपयोग मत करो उसमें से, अपने लिए यदि कृष्ण कहे तो किसके लिए करो, तो देखो ये चित्त ऐसा होता है कि नहीं। हाँ, अब मैं संसारिक कामों में नहीं करूंगा किंतु अपने लिए तो उपयोग करूंगा, अब तुम निष्किंचन हुआ तो तुम्हारा नहीं रहा, अन्यथा एकदम दे दो संपूर्ण रूप से। जब तक ये सब चीज रहेंगी और तब तक तुम प्रेम चाहेगा कैसे होगा, नहीं हो सकेगा। कुछ कृष्ण पर निर्भर रहना होगा, कृष्ण कृपा के ऊपर, जैसी परिस्थिति में रख देते हैं उसी परिस्थिति में रख करके हमको भजन करना है। स्थाने स्थिता तनवांग मनोगी, जहां पर वो रखे हैं वहीं पर रह करके जहां से, और कृष्ण लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करो। अथवा यदि गुरुजन के, यदि ये गोपियां हैं जब घरों में जाती हैं, यदि उसके सास ससुर या और लोग नहीं हैं तो वो तो गान करती हैं गोविंद दामोदर माधवेति इत्यादि, या और कीर्तन करती हैं कृष्ण गोविंद, जल बोलो तो कृष्ण गोविंद गोविंद, उस समय में असमर्थ होने पर वे उनका चित्त उरुक्रम चित्त जाना, उरुक्रम श्री कृष्ण के सन्निधि में उनके समीप में वो चला गया, उनका चित्त जो यहाँ गान करने में रत था अब वो कहाँ चला गया, जहां कृष्ण है उनमें चला गया। चिंतन करते 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 यहाँ पर कृष्ण गोचारण कर रहे हैं, तो क्या देख रही हैं? आज जमुना जी हाथों में उपहार लेकर कृष्ण के चरणों में, पहले तो वो मस्तक तल चक गई, कृष्ण अनाशक्त कुछ दिखे तो लज्जित हो गई, तो नीचे उतर गई और चरणों में उपहार देने लगी लज्जित होकर के, उनकी धारा अवरुद्ध हो गई और उसमें भौंरे पड़ने लग गए। ये सब चिंतन करे। देख रही, अरे जमुना जी थोड़ा सा इधर गई तो देखा क्या, आकाश से सुंदर सुंदर बूंदे गिर रही हैं और मेघा छन्न हो गया। ये तो कृष्ण के सखा है ना, इसलिए इनको छाया करने के लिए ही आ रहे हैं। सबसे मुनि की चिंता और हम लोगों की कृष्ण की चिंता करते हैं और ढेर समस्त संसारिक विषय आ जाते हैं। हरिनाम करते हैं तो भूल जाते हैं और बस देखते न जाने कहां हम। इसलिए ऐसा भजन करने की चेष्टा करें। यदि हरि कथाओं में रुचि हुई तब तो यह अनाशी हो जाएगा और नहीं तो होना बड़ा भारी कठिन है। उरुक्रम मैंने एक और अर्थ दे रहे हैं। उरुक्रम, उरुक्रमे है ना, उरुक्रमे, क्रमे मैंने क्या, उरुक्रमे चित्त जाना, उरुक्रम के तरफ में बड़ी तीव्र गति से उनका चित्त चला जाता है। यहां पर उरुक्रम का शब्द है बड़े बड़ी तीव्र गति से, उरु माने तीव्र गति से कृष्ण के चरणों में चित्त चला जाता है। क्योंकि एक नदी है जिसमें प्रवाह बड़ा तेज है और किसी प्रकार से उसको बंद कर दिया तो क्या होगा, दूसरे तरफ में मेणों को तोड़ करके अपने इसको तोड़ करके इधर ना इधर वो पानी बहने लगेगा। अब जब सास ससुर आए तो उनकी चित्त वृत्ति जरा लज्जित हुई, गान तो बंद हुआ, चिंतन बंद हुआ, अब वो बड़ी तीव्र गति से उरुक्रम के तरफ में, उरुक्रम से उनका चित्त वहां पर जाने लगा बड़ी तेजी के साथ। ऐसा नहीं कि लज्जित होकर के चुपचाप हो गई और घर के काम में मन लगा दिया, ऐसा नहीं, घर का काम करने पर भी ठीक है। सुनो आगे, अब आ रहा है ये सब। इस प्रकार से महाचित्त चोर श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त धिया, अनुरक्त होकर श्री कृष्ण के प्रति अनुराग के सहित प्रविष्ट धी, धी माने बुद्धि, बुद्धि माने यहां पर हृदय, चिंता स्रोत, विचार स्रोत, जहां दिगे जिनका है वे गोपांगनाएं सब विचार आचार शून्य, आचार विचार शून्य, कभी स्नान किया कभी नहीं किया, कभी भोजन किया नहीं किया, कपड़े बदले नहीं बदले, ये सब समाधान कौन कर रहा है, ये तो जोग माया कर रही है सेविया उनकी एक तरह से। वो इसमें आचार विचार कैसा क्या कर, जसो ये एक ब्राह्मणी का सुना ना मथुरा का, दातन चलाते हुए वो कर रही है, यदि इन्हीं की ये दशा है साधारण साधन की स्थिति में, उन गोपियों की कैसी अवस्था होगी उस अवस्था में, वो दातन से चलाती होंगी कि क्या और क्या करती होंगी, कृष्ण के सिर पर अपने चरणों की धूली लगा देती हूँ, न जाने क्या क्या करती होंगी। कोई कोई गोपी कहती है कि हमारे कांटों में, हमारे पैरों में ये अभी कांटा फूट गया, कृष्ण दौड़ते हुए आकर के और कांटा निकालने लगे, नहीं उन्होंने कहा कांटा कहाँ है, तो अभी तो गड़ा था, हाँ ठीक से देखो तो ऐसे गोपियां आचार विचार सुन, हनुमान नहीं समझ सकते इस विचार को, हनुमान जब नहीं समझ सकते हैं, नारद नहीं समझ सकते उन गोपियों के चित्त को, यहां तक कि कृष्ण भी कभी कभी समझने में अपारग हो जाते हैं, ऐसा अनुरक्त ही गोपियां हैं। सब विषय में आचार विचार शून्य, उनका आचार विचार जो अनुराग है कृष्ण के प्रति, ये सब आचार विचार बाह्यक नहीं देखता है, केवल अश्रुकंठ है, रोदन परा हो जाता है, एकदम उनका गला आंसुओं से यहां से निकलकर एकदम भीग जाता है और फिर गालों से बहते हुए और फिर मस्तकसल से होकर कभी देखो अनुभव करके यदि होता है, आभास में भी हो कभी संसारी कामों के लिए, अभी कोई कुछ बच्चों को एक कोई ऐसे कर दे, देखो जो कितने जोर से लंबी सांस या प्राण निकला और आंखों से एकदम सस सस करके निकलता है। प्रॉब्लम यही हो, यदि यही इस स्थिति हो, ये स्थिति ना हो, इसका आभास भी हो, कोई संसार में प्रॉब्लम नहीं है, उसका चित्त कहीं भी संसार में नहीं जा सकता, जगत का सौंदर्य माधुर्य जितना जो कुछ है ऐश्वर्य कभी भी उसके चित्त को स्पर्श नहीं कर सकता है। इसलिए उरुक्रम मात्रे अर्थात उरुक्रमे महावेग से कृष्ण के चरणों में चला जाता, उस वेग को रोकने में कोई भी विषय संसार का कोई भी कुछ भी समर्थ नहीं है जो उनके वेग को रोक सके। हमारे वेग को अभी कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और कोई आ जाएगा, कोई बड़े पदाधिकारी या कोई व्यक्ति आ गया या कोई रोता हुआ आ गया, तो हम लोग सब लोग पाठ का और ये सब छोड़ करके कहां ध्यान चला जाएगा, बस उसके तरफ नहीं चलेगा। एक छोटा सा लड़का रोता हुआ यहाँ है तो बस हमारा सब चित्त और ये सब उधर में चला जाएगा। इसलिए ये कृष्ण अनुरागियां अनुरक्त धियो सब समय अनुरक्त रहती हैं, क्या खाने के समय, पीने के समय, सोने के समय में, कार्य करते समय में, कृष्ण के विरह के समय में, मिलने के समय में, उनका चित्त सब समय उनमें लगा रहता है। अर्थात निरंतर आर्द्र चित्र होने के कारण आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। कहीं कहीं पर चिंतायाना भी पाठ है, तो चिंतायाना में भी कोई बात नहीं, सब समय चित्त के द्वारा उनका चिंतन भी करती है। जिसकी बुद्धि कृष्ण में अनुरक्त हो गई है, उसकी बद्धु उसकी बुद्धि उसका हृदय संसार के किसी भी दूसरे वस्तु को स्पर्श नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? यदि किसी की थोड़ी सी भी बुद्धि कृष्ण में अनुरक्त हो जाए तो कृष्ण कथा सुनने से उसके मनोज जैसे हृदय लाख हो गया, लाख कान हो जाए ना? और उनको सुन करके पी रहूं, उस समय में कोई भी विषय की चिंता, अभी पाठ सुन रहे हैं, अभी कहीं जाना है, अभी मन में ऐसा आएगा कि हमारी गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, इसके लिए तो चिंता कर रहे हैं, और यहाँ हरि कथा हो रही वो कान में नहीं जा रहा है, उसको ठीक से नहीं समझ में आ रहा, ऐसे मैं सब सभी बातों के लिए कह रहा हूं। तो जिनका चित्त कृष्ण में अनुरक्त है, विषय संसार का कोई भी विषय, कोई भी विषय प्रॉब्लम हो, जो कुछ हो, उसको स्पर्श उसकी बुद्धि नहीं करेगी। चाहे मरण का समय भी आ गया है, परीक्षित महाराज मरने वाले हैं, उन्होंने मरण का चिंतन किया नहीं किया? ऐसे ही जिसको मरण की बुद्धि हो जाएगी, समय हो जाएगा, कोई कथा सुनाएंगे नहीं सुनेगा, हाय हाय मर गया, मरने वाला हूं, क्या करूं क्या करूं, यही सर। इसलिए सब विषय में सब विषय लाभ हुई अच्छे बुद्धि पूछते हुए, माने ये कृष्ण में जीत की अनुरक्ति हो गई, वो समझे कि हमारा संसार का सब कुछ हो गया, वो उसको और किसी चीज की इच्छा नहीं है, कितना बजा, इसलिए इस प्रकार से समझे, बाकी जो रह गया वो कल इसकी व्याख्या करो। इन चीजों को सुन करके धारण करने की चेष्टा करो, घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, गुरु जी के लिए, वैष्णव के लिए कोई प्रॉब्लम मत बनाओ, कोई भी। इस प्रकार से अपने ये सब रखते हुए हरि नाम कीर्तन स्मरण और ये सब साधन भजन करो। गौर प्रमाण ये भी दूर हो जाता, आकाश में धूल तक देखती है और कृष्ण का स्मरण जब वो चले जाते हैं तो बहुत देर तक खड़ी रहे, तो उनकी सास अथवा उनके घर वाले उनको कैसे तैसे लाते और घर आकर के क्या करती हैं, बस उन्हीं का लीला का चिंतन, उनका गान। दूसरे समय में वीर के समय में ये दोहन इत्यादि का जो बतलाया, रसोई बनाना, माला ग्रंथन इत्यादि, उनका नाम गुणगान करने से ही स्फूर्ति में साक्षात की भांति कृष्ण का दर्शन करती हैं। हम लोग हरि नाम करते समय साक्षात कृष्ण को देखो तो ऐसे नहीं आते, तो गोवर्धन परिक्रमा किया है, वृंदावन की परिक्रमा किया है, भांडीर वन की किया है, उस समय का चिंतन करो लीलाओं का, जो वहां पर कौन कौन सी लीलाएं हुई, यहीं से बैठे हैं भांडी वन की लीला, नंद बाबा कृष्ण को लेकर के चल रहे हैं। घना घोर आकाश में बादल छाए हैं, बीच बीच में बूंदे पड़ रही हैं। एक तो घना घोर आकाश घने बादलों से ढका, और दूसरा उस जंगल में जो पेड़ हैं तमाल इत्यादि के अत्यंत हरे भरे होने से और अंधकार। और कृष्ण नंद बाबा के हाथों से निकल करके श्रीमती जी के हाथों में जाते हैं, और वो लेकर के भांडीर बट के नीचे आती है, साथ साथ में ललिता विशाखा इत्यादि सखियां वहां पर परम किशोर अवस्था में, और कृष्ण भी किशोर हो जाते हैं। और उधर से ब्रह्मा जी निकलते हैं, गांधर्व वहां पर विवाह होता है, तरह तरह की लीलाएं होती हैं, सखाओं के साथ में गोचारण करते हैं, बंसी बट में रास भी करते हैं। वेणु कुप के यहाँ रास पर गोपियां थक जाने के बाद में वेणु से कुप खोद कर और उसमें सुंदर पानी निर्मल निकलता है, से गोपियों को संतुष्ट करते हैं, पिलाते हैं। हरिनाम करो, हरे कृष्ण और चिंतन करो। तो ये सब तरीके हैं, किंतु संसार की रिक्वायरमेंट, इफ यू रिक्वायर सो मेनी थिंग्स ऑफ वर्ल्डली थिंग्स देन हाउ यू कैन डू। यदि संसारिक वासनाएं हैं और पॉकेट यदि गर्म है, इफ योर पॉकेट्स आर सो वार्म देन इट कैन नॉट बी, वी विल हैव टू बी लाइक अकिंचन निष्किंचन। जब तक अकिंचन नहीं अकिंचन होगा तब तक गड़बड़ी है भाई, तुम्हारी आसक्ति कहीं और है, इसलिए धीरे धीरे इन सबको दूर करो, अन्यथा कृष्ण में बनाओ। ये एक एक पैसा किसके लिए है? कृष्ण के लिए है, तो फिर अपना उपयोग मत करो उसमें से, अपने लिए। यदि कृष्ण कहे तो किसके लिए करो, तो देखो ये चित्त ऐसा होता है कि नहीं। हाँ, अब मैं संसारी कामों में नहीं करूंगा, किंतु अपने लिए तो उपयोग करूंगा। अब तुम निष्किंचन हुआ तो तुम्हारा नहीं रहा, अन्यथा एकदम दे दो संपूर्ण रूप से। जब तक ये सब चीज रहेंगी और तब तक तुम प्रेम चाहेगा कैसे होगा, नहीं हो सकेगा। कुछ कृष्ण पर निर्भर रहना होगा, कृष्ण की कृपा के ऊपर। जैसी परिस्थिति में रख देते हैं उसी परिस्थिति में रख करके हमको भजन करना है। स्थाने स्थिता तनवांग मनोभी, जहां पर वो रखे हैं वहीं पर आकर के जहां से, और कृष्ण लीला का श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि करो। अथवा यदि गुरुजन के, यदि ये गोपियां हैं जब घरों में जाती हैं, यदि उसके सास ससुर या और लोग नहीं हैं तो वो तो गान करती हैं गोविंद दामोदर माधवेति इत्यादि, या और कीर्तन करती हैं कृष्ण गोविंद, जल बोलो तो कृष्ण गोविंद गोविंद, उस समय में असमर्थ होने पर वे उनका चित्त उरुक्रम चित्त जाना, उरुक्रम श्री कृष्ण के सन्निधि में उनके समीप में वो चला गया, उनका चित्त जो यहाँ गान करने में रत था अब वो कहाँ चला गया, जहाँ कृष्ण है उनमें चला गया। चिंतन करते 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 जहाँ पर कृष्ण गोचारण कर रहे हैं तो क्या देख रही हैं, आज जमुना जी हाथों में उपहार लेकर कृष्ण के चरणों में, पहले तो वो मस्तक तल चक गई, कृष्ण अनाशक्त कुछ दिखे तो लज्जित हो गई, तो नीचे उतर गई और चरणों में उपहार देने लगी लज्जित होकर के, उनकी धारा अवरुद्ध हो गई और उसमें भौंरे पड़ने लग गए। ये सब चिंतन करे, देख रही अरे जमुना जी थोड़ा सा इधर गई तो देखा क्या, आकाश से सुंदर सुंदर बूंदे गिर रही हैं और मेघाच्छन्न हो गया। ये तो कृष्ण के सखा है ना, इसलिए इनको छाया करने के लिए ही आ रहे हैं। सबसे मुनि की चिंता, और हम लोगों की कृष्ण की चिंता करते हैं और ढेर समस्त संसारिक विषय आ जाते हैं, हरिनाम करते हैं तो भूल जाते हैं और बस देखते न जाने कहां हम, इसलिए ऐसा भजन करने की चेष्टा करें। यदि हरि कथाओं में रुचि हुई तब तो यह अनाशी हो जाएगा, और नहीं तो होना बड़ा भारी कठिन है। उरुक्रम मैंने एक और अर्थ दे रहे हैं, उरुक्रम, उरुक्रमे है ना, उरुक्रमे, क्रमे मैंने क्या, उरुक्रमे चित्त जाना, उरुक्रम के तरफ में बड़ी तीव्र गति से उनका चित्त चला जाता है। यहां पर उरुक्रम का शब्द है बड़ी तीव्र गति से, उरु माने तीव्र गति से कृष्ण के चरणों में चित्त चला जाता है, क्योंकि एक नदी है जिसमें प्रवाह बड़ा तेज है और किसी प्रकार से उसको बंद कर दिया तो क्या होगा, दूसरी तरफ में मेणों को तोड़ करके, अपने इसको तोड़ करके इधर न इधर वो पानी बहने लगेगा। अब जब सास ससुर आए तो उनकी चित्त वृत्ति जरा लज्जित हुई, गान तो बंद हुआ, चिंतन बंद हुआ, अब वो बड़ी तीव्र गति से उरुक्रम के तरफ में, उरुक्रम से उनका चित्त वहां पर जाने लगा बड़ी तेजी के साथ। ऐसा नहीं कि लज्जित होकर के चुपचाप हो गई और घर के काम में मन लगा दिया, ऐसा नहीं, घर का काम करने पर भी ठीक है। सुनो अब आ रहा है ये सब, इस प्रकार से महाचित्त चोर श्री कृष्ण के प्रति अनुरक्त धिया, अनुरक्त होकर श्री कृष्ण के प्रति अनुराग के सहित प्रविष्ट थी, धी माने बुद्धि, बुद्धि माने यहां पर हृदय, चिंता स्रोत, विचार स्रोत, जहां दिगे जिनका है वे गोपांगनाएं सब विचार आचार शून्य, आचार विचार शून्य, कभी स्नान किया कभी नहीं किया, कभी भोजन किया नहीं किया, कपड़े बदले नहीं बदले, ये सब समाधान कौन कर रहा है, ये तो जोग माया कर रही है सेविया उनकी एक तरह से, वो इसमें आचार विचार कैसा क्या कर, जसो ये एक ब्राह्मणी का सुना ना मथुरा का, दातन चलाते हुए वो कर रही है, यदि इन्हीं की ये दशा है साधारण साधन की स्थिति में, उन गोपियों की कितनी कैसी अवस्था होगी उस अवस्था में, वो दातन से चलाती होंगी कि क्या और क्या करती होंगी, कृष्ण के सिर पर अपने चरणों की धूली लगा देती है, न जाने क्या क्या करती होंगी। कोई कोई गोपी कहती है हमारे कांटों में, हमारे पैरों में अभी कांटा फूट गया, कृष्ण दौड़ते ही आ करके और कांटा निकालने लगे, नहीं उन्होंने कहा कांटा कहाँ है, तो अभी तो गड़ा था, हाँ ठीक से देखो, तो ऐसे गोपियां आचार विचार सुन, हनुमान नहीं समझ सकते इस विचार को, हनुमान जब नहीं समझ सकते हैं, नारद नहीं समझ सकते उन गोपियों के चित्त को, यहां तक कि कृष्ण भी कभी कभी समझने में अपारग हो जाते हैं, ऐसा अनुरक्त धी गोपियां हैं, सब विषय में आचार विचार शून्य, उनका आचार विचार जो अनुराग है कृष्ण के प्रति, ये सब आचार विचार बाह्यक नहीं देखता है, केवल अश्रु कंठे रोदन परा हो जाता है, एकदम उनका गला आंसुओं से यहां से निकलकर एकदम भीग जाता है, और फिर गालों से बहते हुए और फिर मस्तक से होकर चले जाते, कभी देखो अनुभव करके यदि होता है, आभास में भी हो कभी संसारी कामों के लिए, अभी कोई कुछ बच्चों को एक कोई ऐसे कर दे, देखो जो कितने जोर से लंबी सांस या प्राण निकला और आंखों से एकदम सरसर करके निकला, प्रॉब्लम यही हो, यदि यही इस स्थिति हो, ये स्थिति ना हो, इसका आभास भी हो, कोई संसार में प्रॉब्लम नहीं है, उसका चित्त कहीं भी संसार में नहीं जा सकता, जगत का सौंदर्य माधुर्य जितना जो कुछ है ऐश्वर्य कभी भी उसके चित्त को स्पर्श नहीं कर सकता, इसलिए उरुक्रम मात्र अर्थात उरुक्रम में महावेग से कृष्ण के चरणों में चला जाता, उस वेग को रोकने में कोई भी विषय संसार का कोई भी कुछ भी समर्थ नहीं है जो उनके वेग को रोक सके, हमारे वेग को अभी कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, कथा कर रहे हैं, और कोई आ जाएगा कोई बड़े पदाधिकारी या कोई व्यक्ति आ गया, या कोई रोता हुआ आ गया तो हम लोग सब लोग पाठ का और ये सब छोड़ करके कहां ध्यान चला जाएगा, बस उसके तरफ नहीं चला। एक छोटा सा लड़का रोता हुआ यहाँ है तो बस हमारा सब चित्त और ये सब उधर में चला जाएगा। इसलिए ये कृष्ण अनुरागियां अनुरक्त धियो सब समय अनुरक्त रहती हैं। क्या खाने के समय, पीने के समय, सोने के समय में, कार्य करते समय में, कृष्ण के विरह के समय में, मिलने के समय में, उनका चित्त सब समय उनमें लगा रहता है। अर्थात निरंतर आर्द्र चित्र होने के कारण आंखों से आंसुओं की धारा बहती रहती है। कहीं कहीं पर चिंतायाना भी पाठ है तो चिंतायाना में भी कोई बात नहीं, सब समय चित्त के द्वारा उनका चिंतन भी करती है। जिसकी बुद्धि कृष्ण में अनुरक्त हो गई है उसकी बुद्धि, उसका हृदय संसार के किसी भी दूसरे वस्तु को स्पर्श नहीं करेगा। आ रहा है समझ में? यदि किसी की थोड़ी सी भी बुद्धि कृष्ण में अनुरक्त हो जाए तो कृष्ण कथा सुनने से उसके मोहक जैसे हृदय लाख हो गया, लाख कान हो जाए ना? और उनको सुन करके पी रहूं, उस समय में कोई भी विषय की चिंता, अभी पाठ सुन रहे हैं, अभी कहीं जाना है, अभी मन में ऐसा आएगा जी हमारी गाड़ी में पेट्रोल है कि नहीं, इसके लिए तो चिंता कर रहे हैं, और यहाँ हरी कथा हो रही वो कान में नहीं जा रहा है, उसको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है। ऐसे मैं सब सभी बातों के लिए कह रहा हूं। तो जिनका चित्त कृष्ण में अनुरक्त है, विषय संसार का कोई भी विषय, कोई भी विषय प्रॉब्लम हो, जो कुछ हो, उसको स्पर्श उसकी बुद्धि नहीं करेगी। चाहे मरण का समय भी आ गया है, परीक्षित महाराज मरने वाले हैं, उन्होंने मरण का चिंतन किया नहीं किया? ऐसे ही जिसको मरण की बुद्धि हो जाएगी, समय हो जाएगा, कोई कथा सुनाएंगे नहीं सुनेगा, हाय हाय मर गया, मरने वाला हूं, क्या करूं क्या करूं, यही सर। इसलिए सब विषय लाभ होया छे बुद्धि पूछते ही, माने ये कृष्ण में जित की अनुरक्ति हो गई, वो समझे कि हमारा संसार का सब कुछ हो गया, वो उसको और किसी चीज की इच्छा नहीं है। कितना बजा? इसलिए इस प्रकार से समझे, बाकी जो रह गया वो कल इसकी व्याख्या करो। इन चीजों को सुन करके धारण करने की चेष्टा करो। घर वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, गुरु जी के लिए, वैष्णव के लिए कोई प्रॉब्लम मत बनाओ, कोई भी। इस प्रकार से अपने ये सब रखते हुए हरिनाम कीर्तन स्मरण और ये सब साधन भजन करो। गौर प्रमाण।